Hello students, I'm Muskan Mehra from Uttar Pradesh. I'm studying Bachelor of Arts from Banaras Hindu University. Aaj hum padhenge poem 2, My Good Right Hand by Charles Mackay. About the poet, Charles Mackay was born on 27th March 1814 and he died on 24th December 1889. He was a Scottish poet, a journalist, an author, a novelist, and a songwriter. Mackay is mainly remembered for his book, extraordinarily popular, Delusions and the Madness of Crowds. About the poem, the poem is related with the common theme of poverty and the way how it can be removed. When the poet fell in grief and some adversity, all his friends and relatives deserted him. No one came to help him. He found only lip sympathy from them. The poet thinks that trusting other people is like building a castle on sand. Therefore, he decided to believe in God and the hard work to be done by himself. With this realization, his courage returned in him. He overcame his sorrow and soon became prosperous. His hard work lifted him up from sorrow and pain. Ye kavita पावर्टी यानी कि गरीबी की थीम पर बेस्ड है और कैसे इसे हटाया जा सकता है। जब पोएट परेशानियों से घिर गए थे तो उनके सारे दोस्त और सगे संबंधी उनका साथ छोड़ दिए, उनकी मदद करने कोई भी नहीं आया। लोग सिर्फ उन्हें बोल बोल कर सिंपथी देते थे लेकिन असली मदद उनकी कोई नहीं करता था। पोएट समझते हैं कि किसी दूसरों पर भरोसा करना ऐसा है कि जैसे तुम सैंड यानी रेत पर घर बना रहे हो। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो भगवान में विश्वास करेंगे और खुद के किए गए हार्ड वर्क, खुद की हुई मेहनत पर विश्वास करेंगे। जब उन्हें यह रियलाइज हुआ तो उनके अंदर खुद ही साहस लौट आया। वो अपने दुखों से ऊपर उठ गए और जल्द ही वो धनवान हो गए। उनका हार्ड वर्क, उनकी मेहनत उनको उनकी सोरो और पेन से ऊपर उठाया। First, I'll recite the whole poem, then we'll take 4 lines at a time. My good right hand, I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintance were cold. They gave me good counsel, but dreaded their goal. Next 4 lines. Let them go, I exclaimed. I have a friend at my side. To lift me and aid me, whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I'll trust but in heaven and my good right hand. Next 4 lines. My courage revived in my fortune's despite. And my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow. It saved me from pain. It fed me and clad me again and again. Next 4 lines. The friends who had left me came back every one. And darkest advisers looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. First 4 line mein poet kehte hain, I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintance were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. जब कवि गम में डूब चुके थे और भाग्य से शिकायत कर रहे थे तब उन्होंने अनुभव किया कि उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। भाग्य और सितारों, उनकी किस्मत ने उनका साथ देना छोड़ दिया था। उनकी और बदकिस्मती और गरीबी ने उसे गम में डुबो दिया था। वो अपने भाग्य से शिकायत करने और उसे कोसने लगे। उन्होंने मदद के लिए अपने दोस्तों की तरफ देखा। उनको लगा उनके दोस्त उनकी सहायता करेंगे लेकिन ऐसा पता चला उनको कि उनकी मदद करने के लिए तो कोई आगे ही नहीं बढ़ा। यह एक व्यर्थ की खोज थी। उन्होंने सब तरफ देखा लेकिन उनकी तरफ किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। उनके साथी उदासीन हो गए। जरूरत के समय सबने मुंह फेर लिया। उनके साथी उनसे मुंह छुपाने लगे। उनके जान पहचान वाले उनकी तरफ एक बहुत कड़ा व्यवहार रखने लगे। उन्होंने उनको अच्छी सलाह दी लेकिन मदद करने के लिए किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। उसके जानकार और संबंधी उसके प्रति संवेदनहीन और उदासीन हो गए। उन्होंने उसे सिर्फ अच्छी सलाह और नसीहत ही दी लेकिन उन्होंने सिर्फ यही कुछ किया वे उसकी मदद हेतु पैसा उधार लेने से डरते थे. दे ड्रेडेड देयर गोल्ड, यानी कि उनको अपना पैसा प्यारा था. वो उनको सलाह देने के लिए तैयार थे, लेकिन जब उन्हें सही में मदद चाहिए थी, जब उन्हें पैसे की जरूरत थी, तो कोई उनके सामने आना नहीं चाहता था. नेक्स्ट फोर लाइन सेज, लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी एंड एड मी वॉट एवर बिटाइड. To trust to the world is to build on the sand. I'll trust but in heaven and my good right hand. Poet कहते हैं कि let them go, यानी कि उन्हें जाने दो. उन्हें समझ आ गया कि यही होता ही है. जब मदद की जरूरत पड़ती है तो सगे संबंधी दोस्त काम नहीं आते हैं. उन्हें खुद के लिए ही खड़ा होना होगा. उनको याद आया कि उनका एक दोस्त उनकी तरफ है, जो उन्हें उठाएगा, जो उन्हें मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो. उनके देखे नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आया. उसने अपने स्वार्थी मित्रों और रिश्तेदारों से किनारा कर लिया. उसे अनुभव हुआ कि अपनी सहायता अपने आप करना ही सर्वश्रेष्ठ सहायता है. उन्हें अपने दाएं हाथ, माई गुड राइट हैंड, पर भरोसा होना चाहिए, उस पर निर्भर करना चाहिए. दाया हाथ सहायता और परिश्रम का प्रतीक है. केवल कठिन मेहनत ही उसे उसके दुर्भाग्य से छुटकारा दिला सकती है. उसने अनुभव किया कि स्वार्थी मित्रों और रिश्तेदारों या अपने आसपास के लोगों में विश्वास व्यक्त करने से कुछ भी हासिल नहीं होता. उनमें विश्वास व्यक्त करना रेत के ऊपर महल खड़ा करने जैसा है. वो कहते हैं कि टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन सैंड. इसका मतलब हुआ कि दुनिया पर विश्वास करना यही बात हुई कि तुम रेत पर घर यानी या कासल बना रहे हो, जिसकी नींव बहुत कमजोर है और उसमें विश्वास करने से कोई मतलब नहीं. वो कहते हैं आई ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड. आई ट्रस्ट बट इन हेवन का मतलब हुआ मैं भगवान पर विश्वास करूंगा और अपने आप यानी अपने गुड राइट हैंड, जो कि मेहनत का प्रतीक है, अपने ऊपर विश्वास करना और भगवान पर विश्वास करना ही उन्हें आगे बढ़ा सकता है, इसके बजाय कि वो अपने स्वार्थी मित्रों पर विश्वास करें और वो उन्हें धोखा दे दें. Next four lines says, My courage revived in my fortune's despite, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. Kavi ka sahas aur atmavishwas fir se lot aaya. Usse anubhav hua ki evil swayam ki sahayata aur sahas hi unki musibaton aur durbhagyon par kabu pa sakte hain. उसके कारगर हाथ ने उसे शक्ति और कठिन परिश्रम करने का साहस प्रदान किया. My courage revived मतलब उनका साहस दोबारा जिंदा हो जाता है. भले ही उनका फॉर्च्यून यानी उनकी किस्मत ना अच्छी हो, लेकिन उनके अंदर साहस लौट चुका है. और उनका दायां हाथ बहुत ताकतवर है, बहुत दृढ़ संकल्प भरा है उनके अंदर. अपनी मेहनत और अपनी लगन से वो खुद को परेशानियों से ऊपर उठाएंगे, दिक्कतों से बचाएंगे खुद की मेहनत से. सदैव ही उनका दायां हाथ यानी उनकी खुद की मेहनत की वजह से वो आज तक अपना पेट भरते आए हैं, अपने आप को ढकते आए हैं, अपने परिवार को खिलाते आए हैं. आज तक उन्होंने जो भी हासिल किया है खुद की मेहनत से किया है, ना कि दूसरों की मदद से. ये जब उन्हें याद आता है तो उनके अंदर का साहस दोबारा जिंदा हो जाता है और वो नई स्पिरिट से, नए शौक से, नए भाव के दोबारा अपने काम पर लग जाते हैं. इन द नेक्स्ट फोर लाइन द पोएट सेज, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन. आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड. आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड. उनकी जिंदगी में अचानक ही सुधार आया. उनकी मेहनत और परिश्रम यानी दाएं हाथ की मदद से सौभाग्य और समृद्धि प्रदान की उनको. अब वो एक गरीब और असहाय व्यक्ति नहीं थे. उन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप को खुद उस पोजीशन पे वापस लाकर खड़ा कर दिया जहां पर वो पहले थे. उनकी समृद्धि ने उन्हें सम्मान वापस प्रदान किया. एक के बाद एक उनके वो स्वार्थी दोस्त जो उन्हें छोड़कर चले गए थे, जो उनकी जरूरत में मदद करने से इनकार कर दिए थे, वो एक एक कर वापस आ गए. वो लोग जब उन्हें दिक्कत थी तो जो सिर्फ उन्हें सलाह दे रहे थे और असली मदद नहीं कर रहे थे, वे स्वार्थी सलाहकार अब खुश थे और उनके साथ खड़े थे. जरूरत के समय में अब वे उससे सहायता की आशा करते थे. जब उन्हें अब जरूरत पड़ेगी तो वे सोचते थे कि अब इससे हमें सहायता मिल सकती है. लेकिन अब कवि को ऐसे स्वार्थी दोस्तों और सलाहकारों की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे समझ चुके थे कि उनका असली दोस्त, उनका असली सलाहकार, उनका दायां हाथ यानी खुद की परिश्रम और मेहनत है। वो अपने मेहनत, अपनी दाएं हाथ, अपनी असली मेहनत और अपने परिश्रम को शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि वे उस पे भरोसा करते हैं, ना कि इन स्वार्थी दोस्तों और सलाहकारों पर। इस पोएम के थ्रू पोएट कहना चाहते हैं, हैव फेथ इन सेल्फ, हैव फेथ इन एफर्ट्स, हैव फेथ इन गॉड। अपने आप में भरोसा होना चाहिए, अपनी मेहनत में भरोसा होना चाहिए और भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए। ये सब चीजें ही मिलकर हमें अच्छी जगह पहुंचाएंगे, हमें सफल करेंगी, ना कि हमारे स्वार्थी दोस्त और वे लोग जो जरूरत के समय में हमें छोड़ के चले जाते हैं। ग्लॉसरी, फेल इनटू फ्रेज, वाज ओवरपावर्ड, ग्रीफ नाउन, सैडनेस बिकॉज ऑफ पावर्टी, कंप्लेन वर्ब टू एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन, सॉट वर्ब ट्राइड टू फाइंड, इन वेन इडियम विदाउट सक्सेस, कंपेनियंस नाउन फ्रेंड्स, अक्वेंटेंस नाउन समवॉट फमिलियर पर्सन्स, काउंसिल नाउन एडवाइस ओपिनियन, ड्रेडेड देयर गोल्ड फ्रेज, वर अफ्रेड ऑफ लेंडिंग देयर मनी, एक्सक्लेम्ड वर्ब सेड लाउडली विथ कॉन्फिडेंस, लिफ्ट वर्ब बूस्ट अप, टू बिल्ड ऑन द सैंड, टू बेस अ बिल्डिंग ऑन अ वीक फाउंडेशन, गुड राइट हैंड नाउन माई ओन एफर्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिवाइव्ड वर्ब रिस्टोर्ड केम बैक, इन फॉर्च्यून्स डिस्पाइट फ्रेज इन स्पाइट ऑफ इल फॉर्च्यून, स्पिरिट नाउन मूड, लाइट एडजेक्टिव चेयरफुल, डार्केस्ट एडजेक्टिव सेल्फिश, लुक्ड ब्राइट वर्ब लुक चेयरफुल इन अ होप टू गेट माई फाइनेंशियल हेल्प इन देयर नीड। टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी 1. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सॉट। द मीनिंग ऑफ द वर्ड सॉट इज ट्राइड टू फाइंड। द ऑप्शंस आर सैडनेस, बी ट्राइड टू फाइंड, सी एडवाइस, डी विदाउट सक्सेस। आंसर इज ट्राइड टू फाइंड। सेकेंड क्वेश्चन इज लेट देम गो। द वर्ड देम हियर रिफर्स टू ए गॉड द अलमाइटी, बी एनिमी, सी फ्रेंड्स, डी नन ऑफ द अबव। Answer is friends. Let them go refers to friends. The friends who deny to help him in the need. Next is answer the following questions in about 30 to 40 words each. Question number 1. Why did poet fall into grief? Kavi gham mein kyun doob gaya? The poet fell into grief as he was passing through bad days. Misfortune and poverty were pestering him. In his hour of need, none came forward to help him. His friends and acquaintances deserted him, leaving him alone to suffer in poverty. कवि के दिन खराब चल रहे थे, इसलिए वे गम में डूबे थे। दुर्भाग्य और गरीबी से वे बहुत परेशान थे। जब उन्हें जरूरत थी तो कोई भी उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। उनके दोस्त और संबंधियों ने उन्हें गरीबी में अकेला छोड़ दिया था। Next question is, why did the poet's search for a friend prove to be fruitless? कवि के द्वारा दोस्त की खोज क्यों व्यर्थ थी? The poet was passing through adverse circumstances. His poverty led him to fall into grief. Naturally, he needed someone to help him in the hour of the need. He began searching for a friend who could stand with him in the hour of difficulties. Unfortunately, his search for a good friend proved to be fruitless. No friend came forward to help him in tiding over his misfortune and poverty. कवि बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे थे। गरीबी ने उन्हें गम में डुबा दिया था। स्वाभाविक रूप से जरूरत के समय उससे किसी की सहायता की आवश्यकता हुई। इन विपरीत परिस्थितियों में साथ देने के लिए उसने एक दोस्त की खोज प्रारंभ की, किंतु दुर्भाग्य के कारण उन्हें दोस्त की खोज में नाकामयाब होना पड़ा। कोई भी दोस्त उन्हें दुर्भाग्य और गरीबी से उबारने के लिए नहीं था। उनके सारे दोस्त उन्हें अकेला छोड़ दिए थे इस गरीबी और परेशानी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फ्रेंड दैट कुड हेल्प एंड मेक द पोएट हैप्पी। कौन सा दोस्त कवि को प्रसन्नचित तथा सहायता कर सकता था? ऑल हिज फ्रेंड्स प्रूव्ड फॉल्स, नन केम फॉरवर्ड टू हेल्प द पोएट इन हिज आवर ऑफ नीड। देन ही रियलाइज्ड that self-help was the best help. he turned to his good right hand for help. His good right hand gave him strength to work hard and earn money. When all other friends failed, his good right hand came to his help and made him happy. कवि के सारे दोस्त गलत साबित हुए थे। कवि की जरूरत के समय में उनका कोई भी दोस्त, उनका कोई भी सगा संबंधी उनकी सहायता के लिए उनके सामने नहीं आया। तब उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें स्वयं की ही सहायता करनी होगी। स्वयं की सहायता ही सबसे अच्छी सहायता है। उसने अपने उपयोगी दाएं हाथ, माय गुड राइट हैंड की सहायता लेना प्रारंभ कर दिया। उनके दाएं हाथ की मदद से, यानी खुद की मेहनत जब उन्होंने करना शुरू किया, तो वो अपना पैसा अर्जित कर पाए और अपनी गरीबी से बाहर निकल पाए। जब उनके सभी दोस्त असफल रहे, तब उसके उपयोगी दाएं हाथ ने उनकी सहायता की तथा उन्हें इस गरीबी की सिचुएशन से उबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द पोएट फील डिसअपॉइंटेड? कवि को निराशा क्यों हुई? द पोएट वॉज पासिंग थ्रू रियली बैड सर्कमस्टांसेस। Poverty and adversities had made him a broken man. He looked towards his friends to help him in the hour of need. His search proved quite futile. Even his acquaintances deserted him. They gave him unwanted counsel but didn't lend any money to help him. All these circumstances made him a bitter and disappointed man. पोएट वॉज पासिंग थ्रू रियली बैड सर्कमस्टांसेस, यानी पोएट बहुत ही बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे थे। ऐसी बुरी परिस्थितियां और गरीबी उन्हें एक टूटा हुआ इंसान बना दी थी। वो सोच रहे थे कि उनके दोस्त उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे, उनकी मदद के लिए सामने आएंगे और उनके साथ इस बुरे समय में खड़े रहेंगे। लेकिन जब उन्होंने एक ऐसा दोस्त खोजने के लिए निकले, तो उनकी खोज नाकाम रही। यहाँ तक कि उनके जान पहचान वाले भी उन्हें धोखा दे दिए। कोई दोस्त, कोई सगा संबंधी उनकी मदद करने के लिए सामने नहीं आया। वे सब उन्हें समझाए और उनको सलाह तो दी, लेकिन जब पैसे की बात आई तो किसी ने भी उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया। किसी ने भी उन्हें मॉनिटरी हेल्प, यानी पैसे की मदद नहीं की। ये सब चीजें देखकर, लोगों की उनके प्रति ऐसा व्यवहार देखकर, कवि काफी दुखी और परेशान आदमी बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द पोएट्स हार्ड वर्क? कवि के कठिन परिश्रम का क्या परिणाम निकला? द पोएट्स हार्ड वर्क प्रूव्ड वेरी मच प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल। हिज गुड राइट हैंड मेड हिम वर्क हार्ड एंड अर्न मनी। हिज पॉवर्टी एंड बैड डेज एंडेड। ही अर्नड वेल्थ एंड रिस्पेक्ट। ऑल हिज सेल्फिश फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु हैड डिजर्टेड हिम अर्लियर came back to him one by one. कवि की मेहनत रंग लाई। उन्होंने खूब मेहनत की और अपने दाएं हाथ के हेल्प से, उसकी मदद से एक बहुत ही प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल इंसान बने। वो बहुत मेहनत की और खूब पैसा कमाए। उनके बुरे दिन, उनकी गरीबी के दिन खत्म हो चुके थे। उन्होंने धन और आदर दोनों अर्जित कर लिया था। उनके सभी स्वार्थी दोस्त और संबंधियों ने, जिन्होंने उनका साथ छोड़कर चले गए थे, वे सब एक के बाद एक सब लौट कर वापस आ गए। नेक्स्ट इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द पोएट ओवरकम हिज सैडनेस? द पोएट ओवरकेम हिज सैडनेस थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन। ही रियलाइज्ड दैट सेल्फ हेल्प इज द ओनली हेल्प दैट कैन चेंज वन्स फेट। His courage revived. He forgot all about his selfish friends and acquaintances. Reposing faith in them was like building a castle on the sand. He realized that his good right hand was his best friend. This realization ended his rejection. His spirit became light and cheerful. He could shape his own fate, not by depending on others, but depending on his hard work. Reposing faith in God and his good right hand helped him in overcoming his sadness. कवि अपने दुख और परेशानी से तब उबर पाया जब उन्होंने खुद पर विश्वास किया। उनको समझ आया कि खुद की मदद करना ही अपनी किस्मत बदल सकता है। इससे उनका साहस लौट आया। वो अपने सारे स्वार्थी दोस्तों और सलाहकारों के बारे में भूल गए। उनके ऊपर फेथ लगाना ऐसा था जैसे कि रेत के ऊपर महल खड़ा करना। जिसकी नींव ही कमजोर हो तो वो महल भी कमजोर ही बनेगा। उनको समझ आया कि उनका गुड राइट हैंड यानी उनका दायां हाथ ही उनका सबसे अच्छा मित्र था। जब उनको यह रियलाइज हुआ तो उनकी उदासी दूर हो गई, वो स्फूर्तिवान और आनंदित हो गए। उनको समझ आया कि वो अपना फेट यानी अपनी किस्मत खुद शेप कर सकते हैं, बिना दूसरों पर डिपेंड किए, लेकिन अपनी मेहनत पर डिपेंड करके, अपने हार्डवर्क पर डिपेंड करके। उन्होंने भगवान पर दोबारा विश्वास करना स्टार्ट किया और अपने गुड राइट हैंड पर, और ये सब उन्हें उनके दुख से उबारने में मदद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोएट नॉट नीड हिज फ्रेंड्स एनीमोर? कवि को अब अपने दोस्तों की आवश्यकता क्यों नहीं रही? There came a qualitative change in the attitude of the poet. Earlier, he used to look towards his friends in the hour of his need. They deserted him and didn't rise to the occasion. He learned a lesson. He realized that his good right hand was his best friend. Only his hard work and honest labor could change his fate and overcome his poverty. Things changed for the better. He became prosperous and rich. He didn't need his selfish friends anymore. On the other hand, when he became prosperous, all his friends who had deserted him came back to him one by one. But time had changed and he didn't need their help anymore. कवि के दृष्टिकोण यानी सोचने के तरीके में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। उन्हें पहले अपने दोस्तों की बहुत आवश्यकता पड़ती थी, उन्हें जब जरूरत पड़ती थी, जब वो दुख में होते थे तो वो अपने दोस्तों की तरफ देखते थे, लेकिन जब ऐसे ही आवश्यकता के समय उनके दोस्तों ने उन्हें धोखा दे दिया तो उन्हें महसूस हुआ कि अपने दोस्तों पर ना निर्भर होकर हमें अपने दाएं हाथ, अपने उपयोगी दाएं हाथ को अपना दोस्त बनाना चाहिए। सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत ही अपनी किस्मत बदल सकती है और हम अपनी गरीबी से उबर सकते हैं। ऐसा जानने के बाद चीजें बदलने लगी, वो बहुत धनवान और समृद्ध बन गए। अब उनको अपने स्वार्थी मित्रों की आवश्यकता नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जब वो धनवान और समृद्ध बन गए तो उनके दोस्त जो उन्हें धोखा दिए थे जरूरत के समय में, एक एक करके उनके पास लौटने लगे। लेकिन इस समय समय बदल चुका था, कवि को अपने ऊपर ज्यादा भरोसा था इन दोस्तों से, और अब इन सब की उनको जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इंस्पिरेशंस डू वी गेट फ्रॉम द पोएम? इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? See Macaz, my good right hand is a motivational and inspiring poem. It gives a definite inspiring message to the readers. Self-help is the best help. Our good right hand is our best friend. Only through the good right hand we can work hard to change our fate. Our hard work can help us in overcoming our poverty and bad days. Depending on fast friends and acquaintances is like building a castle on the sand. No one comes to help in the hour of our need. Only our faith in God and the good right hand can help us to earn money, respect and poverty. See Macaz ki kavita, My Good Right Hand, ek bahut hi prerak kavita hai aur hame motivate karti hai. Ye apne paathakon ko ye nishchit sandesh deti hai ki swayam ki sahayata hi sabse achhi sahayata hai. Hame apne upyogi daaye haathon ko, hame apne upyogi daaye haath ko apna sabse achha dost manna chahiye. Keval apne upyogi daaye haath se hum kathin parishram karke apne bhagya ko parivartit kar sakte hain. हमारा कठिन परिश्रम हमें अपनी गरीबी और बुरे दिनों से निजात दिला सकता है, अपने बुरे दिनों से निकाल सकता है। हमें अपने दोस्तों और निकट लोगों पर भरोसा करना ऐसा है जैसे कि रेत पर महल बनाना। ये निश्चित है कि ये जिस महल की नींव कमजोर हो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। हमें आवश्यकता के समय कोई सहायता नहीं करता, केवल ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास तथा उपयोगी दाएं हाथ ही हमें समृद्ध बना सकते हैं, हमें समाज में सम्मान दिला सकते हैं और धनवान बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई व्हाट डज द गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट? उपयोगी दाएं हाथ किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? See Macaz's message is quite symbolical. Here, the good right hand represents honest labor and hard work. It represents self-help. It urges us not to depend on others for help in hour of the need. All our friends and acquaintances will prove false. Only the good right hand will come to our help when it is needed. It also means that we can shape our fate only through our efforts. And out of the two hands, the good right hand is more dynamically involved in human activities. Through hard work, we can bring name, fame, and prosperity. It lies completely in our own hands to shape and change our destiny. See, मक्याय का संदेश काफी प्रतीकात्मक है, काफी सिंबॉलिकल है. वो हमारे दाएं हाथ से रिप्रेजेंट करते हैं कड़ी मेहनत और ईमानदार श्रम. यह स्वयं सहायता का भी प्रतीक है. यह इस बात का पर बल देता है कि हमें जरूरत के समय किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. हमारे सभी दोस्त तथा परिचित केवल नकली सहायता प्रदान करेंगे, केवल जरूरत के समय में उपयोगी दाएं हाथ ही सहायता प्रदान करेगा. इसका यह मतलब हुआ कि हम अपने भाग्य को केवल अपने प्रयासों से ही संवार सकते हैं. दोनों हाथों में केवल उपयोगी दाएं हाथ ही मानवीय क्रियाकलापों यानी एक्टिविटीज में गतिशील रहता है. इसका इसलिए संबंध एफर्ट से जोड़ा गया है. कठिन श्रम कह सकते हैं हमारे भाग्य को सवारने तथा परिवर्तित करने में हमारे हाथों का ही पूर्ण योगदान है, ना कि हमारे दोस्तों का जो हो सकता है जरूरत के समय में हमें छोड़कर चले जाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द पोएट पुट्स हिज ट्रस्ट ऑन. एक्सप्लेन, कवि किन दो बातों पर विश्वास जताते हैं, वर्णन कीजिए. विद हिज चेंज्ड एटीट्यूड द पोएट पुट्स हिज ट्रस्ट ओनली इन टू थिंग्स. द फर्स्ट वन इज गॉड. God gives him strength to overcome dejection and disappointment. The second and the most important thing that the poet puts his trust in is his good right hand. He realizes that depending on his false friends and relatives is only like building a castle on the sand. His good right hand can help him to work hard to earn money. He can overcome his bad days and poverty only by employing his good right hand to the maximum. Only it can help in earning respect, money and prosperity. जब पोएट का एटीट्यूड चेंज होता है, जब उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है, तो उनको समझ आता है कि सिर्फ दो चीजों पर विश्वास किया जा सकता है. पहला है ईश्वर. ईश्वर हमें उदासी और निराशा से बाहर निकालते हैं. वो हमें अपने ऊपर विश्वास करने का साहस देते हैं. और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिस पे कवि अपना विश्वास जताते हैं, वे है उनका गुड राइट हैंड, उनका अपना दाया हाथ. वो समझ जाते हैं कि अपने स्वार्थी दोस्तों और रिलेटिव्स यानी सगे संबंधियों पर विश्वास करना ऐसा ही हुआ जैसे कि रेत पर महल बनाना. उनका दाया हाथ ही उनको मदद करेगा मेहनत करने में और अपने लिए पैसे कमाने में. वो अपने बुरे दिनों और अपनी गरीबी से तभी उबर सकते हैं जब वो अपने दाएं हाथ का प्रयोग करके खूब मेहनत करें, और यही उन्हें सफलता दिलाएगा. सिर्फ उनका दाया हाथ और खुद पर विश्वास ही उन्हें सम्मान दिलाने में मदद करेगा, धन अर्जित कर पाएंगे और एक समृद्ध मनुष्य बन पाएंगे. तो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडीड पोएम 2 माय गुड राइट हैंड बाय चार्ल्स मैकेय, इन विच द पोएट टेल्स अस कि कैसे हमें दूसरों पर भरोसा ना करके, अपने सगे संबंधियों, अपने स्वार्थी मित्रों पर भरोसा ना करके खुद पर भरोसा करना चाहिए. वो इसे अपने दाएं हाथ से दर्शाते हैं कि कैसे अपने दाएं हाथ पर भरोसा कर मेहनत करके हम अपने गरीबी और अपने बुरे दिनों से बाहर आ सकते हैं, और भगवान पर भरोसा करके सही रास्ते पर चल सकते हैं, और जिससे हमको समृद्धि और धन धान्य प्राप्त होगा. और जो सगे संबंधी और दोस्त हमें मुसीबत के समय छोड़कर चले गए थे, वो कैसे हमारे पास वापस लौट सकते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी पोएम 3 द लोटस बाय तोरू दत्त. थैंक यू स्टूडेंट्स.